તારીખ 23/11/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 66 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 40D.
इंद्रिय सुख दुख रूप है, तो जैसे यहाँ सुई चुभी तो दुख महसूस हुआ, वैसे इंद्रिय सुख भोगते समय वह दुख रूप महसूस क्यों नहीं होता है? इंद्रिय सुख दुख रूप है वो तो ज्ञानी कहते हैं, संसारी जीव को ऐसा अनुभव नहीं होता। संसारी जीव को तो सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव नहीं होता। अब ज्ञानी की बात स्वीकार कैसे करे? जो अनुभव उल्टा है तो स्वीकार कैसे करे? ये उलझन है, एक समस्या है। ज्ञानी कहते हैं इसलिए ठीक ऐसा हो सकता है, लेकिन लगना सुख दुख तो लगने की चीज है और लगता तो है ही नहीं, तो आप कहते हो ऐसा क्यों नहीं लगता है? अगर सही बात होती तो हमको भी लगना चाहिए, और आप कोई गलत बात तो कहते नहीं, समस्या खड़ी होती है। जब आपकी बात सही है तो भी लगती तो है ही नहीं, क्या करें? ऐसा एक प्रश्न उठाया है, समाधान है कि जिसको सुख लगता है उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है और बुद्धि का भ्रम हो गया है। ज्ञान में जो दोष है वो भ्रम वाला दोष है, भ्रम से बात उल्टी सुलटी लग सकती है, तो ये भ्रम है, संसारी जीव को भ्रम है, इसलिए दुख को भी वो सुख रूप गिनता है। अगर सुख ही होता तो सुख का त्याग क्यों करता? तो वहां उसको थोड़ा विचार करना पड़ता है कि बात तो ठीक है, तो मिठाई का एक पीस खाने में सुख लगे, 10 पीस खाने में सुख तो 10 गुना हो जाता, और 100 पीस खाने में 100 गुना हो जाता, लेकिन बात उल्टी अनुभव में आती है, सुख बढ़ता नहीं है और फिर तो दुख लगने लगता है। तो बात तो कुछ समझ में आती है, इसलिए अस्वीकार भी नहीं करता, और सुख लगता है इसलिए स्वीकार भी नहीं कर सकता। ये समस्या है। तो ज्ञानी समझाते हैं कि देख, तेरी बुद्धि में एक भ्रम है, जहां तक भ्रम है वहां तक सही यथार्थ ज्ञान नहीं होता होगा और दुख दुख रूप समझ में नहीं आएगा, ऐसे बात बनेगी। बुद्धि का भ्रम हो गया है इसलिए दुख महसूस नहीं होता, नहीं तो इंद्रिय सुख आकुलता रूप है, उसमें आकुलता तो है ही, लेकिन अपने परिणामों को गौर से सूक्ष्मता से देखने से वो मालूम पड़ता है। जिसको सुख मालूम पड़ता है वो अपने परिणाम के आकुलता को देखता ही नहीं है। अब ज्ञानी उसका ध्यान दिलाते हैं कि देखो तुम थोड़ा गौर से देखो, उसमें आकुलता है कि नहीं तुमको मालूम पड़ जाएगा। तो आकुलता वही दुख है, आकुलता है वही दुख है। दुख दो तरह का है। प्रश्न पूछने वालों ने दुख का जो दृष्टांत पकड़ा है सुई का, तो सुई चुभी तो दुख लगा, वो पीड़ा का दुख है। तो दुख दो तरह का होता है, एक पीड़ा का होता है और एक आकुलता का होता है। आकुलता कहो, टेंशन कहो, तनाव कहो, उसका भी एक दुख होता है। दुख का प्रकार दो है। तो उसने दृष्टांत वो लगाया कि पीड़ा का दुख लगता है, ऐसा दुख तो नहीं लगता है, लेकिन वो प्रकार है भी नहीं जो प्रश्न में दृष्टांत लिया है। ऐसा प्रकार का तो दुख नहीं है, दुख दूसरा प्रकार का है। ऐसे दुख के डिग्री के हिसाब से तो बहुत प्रकार है, असंख्य प्रकार है, लेकिन इसका दो विभाग मुख्य है, एक पीड़ा का और एक आकुलता का, टेंशन का, असमाधान का। ये तनाव का दुख है, वो पीड़ा का दुख से ज्यादा दुख है, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकती दोनों के, और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकार अंतर है, अलग अलग प्रकार है, जाति अलग है उसका। जैसे और दृष्टांत लें, बड़ा दृष्टांत लें, समर्थ दृष्टांत, नरक में दुख है वो पीड़ा का है, और निगोद में दुख है वो पीड़ा का नहीं है। वहां ज्ञान सिकुड़ गया है, एकेंद्री हो गया है, और वहां जो दुख है वो टेंशन का दुख है, असमाधान का दुख है। वो दुख सबसे ज्यादा है। कोई ये कहे कि नरक का दुख ज्यादा या निगोद का, तो निगोद का दुख ज्यादा है। और वो कैसे समझ में आता है कि जैसे किसी को बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाता है, ओवर लिमिट टेंशन हो जाता है, तो सुसाइड करता है, खुदकुशी कर लेता है, तो मृत्यु में तो दुख लगेगा, वो कभी आग से जलेगा, तो आग के जलने में कोई पीड़ा नहीं है क्या? ट्रेन के पटरी के नीचे सो जाएगा तो कट जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या उसमें दुख नहीं होगा क्या? पीड़ा नहीं होगी क्या? लेकिन वो पसंद करता है, ऐसा करना वो पसंद करता है, लेकिन टेंशन का दुख को वो पसंद नहीं करता। ये सिद्ध होता है इससे वो सिद्ध होता है कि टेंशन का दुख ज्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। बढ़ता है तो वहां तक बढ़ता है कि वो सुसाइड करता है, इतनी पीड़ा को मंजूर करता है वो। हाँ, तो मतलब वो तो क्या है, तीव्र मंदता तो होती है हर बात में, पीड़ा में तीव्र मंदता होती है, इसमें भी तीव्र मंदता। डिग्री में तो असंख्य प्रकार है, वो तो दुख की डिग्री होगी। ये जो सुख दुख का प्रॉब्लम है, ये सभी जीवों का प्रॉब्लम है, और उसकी छानबीन अच्छी तरह होनी चाहिए कि इसका साइंस क्या है, इसका मैथमेटिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है। ये सब तरह से उनकी छानबीन होनी चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और सही सॉल्यूशन निकाल करके हमारे गुरुओं ने इसके लिए शास्त्र भरे हैं, क्योंकि वो तो जानते थे कि हम तो चले जाने वाले हैं। और इस प्रकार का जो ज्ञान है, विद्या है हमारे पास सुखी होने की, वो तो हम हमारे साथ ले जाएंगे। तो परोपकार करने के हिसाब से, निष्काम करुणा ते के करुणा देख करके, संसार के जीवों को दुखी देख करके उन्होंने ग्रंथ बनाए। अब जिसकी होनार अच्छी है उनको पढ़ता है और उनको फॉलोअप करता है। तो पहले नहीं पता लगता है, इसका कारण वो कि पहले जब खाया तो देखा आकुलता है कि सुख है कि दुख है, वो देखा कभी? देखने का कोशिश किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? कि जो सुख का पूर्वग्रह था, अभिप्राय था कि ये मेरे लिए सुख का साधन है, सुख का निमित्त है, तो वो पूर्वग्रह था। और उदय में वो चीज खाने में आ गई तो रस बढ़ गया। तो जहाँ रस बढ़ता है वहाँ एकाग्रता हो जाती है। तो एकाग्रता होती है वहाँ छानबीन तो होती नहीं, तलाश होती नहीं कि सुख है कि दुख है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। अगर कोई धीरज से पूर्वग्रह रहित होकर के, क्या हाँ, जो अंडर प्रेजुडाइस है उसमें तो कोई बात सही दिखती नहीं है। ये न्याय का मुख्य सब्जेक्ट है कि कोई भी अंडर प्रेजुडाइस है वो सही न्याय नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कैसा भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो भी, क्यों कि ओपिनियन बायस्ड हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग तो प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। तो बायस ओपिनियन में कोई बात सही दिखेगी नहीं। तो प्रेजुडाइस से मुक्त होकर के, पूर्वग्रह से मुक्त होकर के ज्ञानी कहते हैं और हमको अनुभव नहीं होता है, तो थोड़ा प्रेजुडाइस से मुक्त होकर के देखने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा जो कोई देखता है मुमुक्षु अभिप्राय से मुक्त होकर के कि अच्छा है या बुरा है हमको कुछ नहीं देना, कोई अनजानी चीज आई इसके प्रति हमारा तो कोई प्रेजुडाइस है ही नहीं खाने में, कि हमने तो वो चीज कभी खाई नहीं। अब कोई चखाते हैं, खिलाते हैं कि देखो भाई आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, तो आप बराबर अच्छा बुरा का दृष्टिकोण से खा करके स्वाद लेकर के बताएंगे कि हमको तो ऐसा लगा। तो उसमें क्या है कि आपकी ऐसी रुचि हो उसी अनुकाल आप, उसी अनुसार आपका अभिप्राय आएगा। आपकी खाने की भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि होती है, किसी को मिठाई पसंद है तो किसी को नमकीन पसंद होती है। दो चीज आपने यहाँ दो विभाग कर दे मैं खाने में, तो जिसको नमकीन पसंद है उसको दोनों बात थाली में रख दो, लेकिन उसका पहला हाथ नमकीन पर जाएगा। और जिसको मिठाई की रुचि है वो बगल में नमकीन पड़ा है, वो पहला हाथ उसका मिठाई पर जाएगा। तो रुचि के अनुसार अपना ओपिनियन देगा। यहाँ तो ऐसी चीज नहीं है, यहाँ तो ऐसी बात है कि भी आप भले ही कोई भी चीज हो, जाने अनजाने कोई भी चीज हो, खाने के परिणाम में आपका जो खिंचाव हुआ, जिस चीज खाने हैं उस पर आपके परिणाम का जो खिंचाव हुआ, वो खिंचाव आकुलतामय है या निराकुल है, आप जांच तलाश करके हमको दिखाओ, बताओ। इस तरह से अगर न्यूट्रल होकर के देखा जाता है तो ज्ञानी की बात सही मालूम पड़ती है। फिर ज्ञानी समझाते हैं कि देखो तुमको भ्रांति का एक रोग है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, विचार औषध ध्यान। आत्मसिद्धि शास्त्र में गाथा लिखे। तो ये जो भ्रांति है वो सबसे बड़ा रोग है। उसमें सही चीज सही नहीं दिखती। जैसे संसार की रुचि वाला कोई जीव है तो वो कहेगा कि हमको आपका सत्संग अच्छा नहीं लगता, सुनते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता, और संसार की सब बातें अच्छी लगती हैं, ऐसे रहना, ऐसे खाना, ऐसे सब प्रकार के जो सुख के साधन है वो हमको अच्छे लगते हैं, और ये बातें अच्छे नहीं लगती हैं। तो लगना वो कोई सही है वो बात है थोड़ी ना है। भ्रांति है तो ऐसा लगेगा। और ये सबसे बड़ी भ्रांति सभी संसारियों को है, सभी को है। कुछ एक लोग जो विचारवान है या विशेष बुद्धिमान है फिर वो उसका विचार करते हैं कि हमको दुख भी भोगना पड़ता है, हम नहीं चाहते हैं तो भी कहीं दुख के प्रसंग हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमको दुख भी भोगना पड़ता है, और हम जो 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 सुख को चाहते हैं वो सुख हमको हमारी इच्छा के अनुसार मिलता भी नहीं है। तो इसका कोई समाधान होगा या नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला है नहीं निकाला है किसी ने। जैसे सबसे समर्थ दृष्टांत वो है कि जो पश्चिम के देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप अमेरिका, वहाँ पैसे ज़्यादा है, हमारा देश तो इसके आगे गरीब देश माना गया है, और स्टैटिस्टिक्स भी वही कहता है कि पैसे वहाँ बहुत हैं, लेकिन वो लोग सुखी नहीं है, वो बात को स्वीकार करते हैं कि हम तो हमको हम लोग सुखी नहीं है, तो वहाँ पीड़ा का दुख नहीं है, टेंशन में बहुत रहते हैं। बहुत टेंशन में है कि इसका कारण क्या है कि जो भी संयोग है, अनुकूलता है, उसका रस है, उसकी पकड़ है, वही उनको टेंशन पैदा करता है। कोई प्रतिकूलता का टेंशन नहीं है उन लोगों को, मकान नहीं है, गाड़ियां नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वो बात नहीं है, सुविधा अच्छी से अच्छी है, अधिक से अधिक ऑटोमाइजेशन है वहां, ऑटोमेटिक बहुत सी बातें बनती हैं, फिर टेंशन किस बात का? तो बोलते कि हमारे समझ में नहीं आता है, इतना सब कुछ होने पर भी टेंशन क्यों होता है, वो बात उन लोगों की समझ में नहीं आती। वो लोग कोई बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बुद्धि नहीं है कि सुख दुख को वो कैसे समझे। सुख दुख का विज्ञान जो है, साइंस है, वो उन लोगों के पास नहीं है, वो इंडिया में है, भारत में है वो, और वो भी जैन दर्शन में जितना है उतना कोई अन्य दर्शन में देखा नहीं जाता, क्योंकि एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। फिलोसॉफी को देखते हुए सबसे अधिक और सूक्ष्म फिलोसॉफी जैनियों की है, दूसरा नंबर वेदांत का आता है, फिर बाकी के जो हैं बौद्ध वगैरह जो है ये तो बहुत क्रिश्चियन मोमेडन ये लोग में तो बहुत कम है, बहुत कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। और वो बात वो एग्री करते हैं, ये जो बंबई में है ना वो पांडुरंग आथे वाले, वो जाते हैं कभी कभी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। हम लोग जाते हैं उसमें तो क्या है कि हमारे ग्रुप सुनने वाले होते हैं, फॉरेनर्स इतने सुनने को नहीं आते। जब ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वहाँ तो दुनिया के सभी विश्व के जो धर्माचार्य लोग रहते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। तो कुछ 40-45 साल पहले की बात है, वो जापान के कोई बगल के टोक्यो के बगल के सिटी में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग आए थे। तो वो स्पीकर के सीट पे 3 दिन चुना गया, इलेक्टेड कर गए। तो उन्होंने ये बात बताया कि वो लोग एग्री करते हैं कि वी आर चाइल्ड इन फिलोसॉफी, हम तो बच्चे हैं, आप जो तत्व ज्ञान और फिलोसॉफी बताते हैं उसमें हम लोग बच्चे हैं। वो वेदांतियों से, वो वेदांत का वेद पारगल आदमी है, वेद पढ़े हुए हैं बनारस में, और हमने सुने भी है उनको, काफी सुना है बंबई में। लेकिन जैन फिलोसॉफी को देखते हुए वेदांत से अनंत गुण तत्व ज्ञान का निरूपण, सूक्ष्म निरूपण जैन दर्शन में है, वो हम सिद्ध कर सकते हैं। कंपैरेटिवली और मुख्य बात तो है कि सुख दुख की जो समस्या है सारे संसार के जीवों की, उस समस्या को उन लोगों ने सॉल्व किया है। और इसके मूल्य सबसे बड़ा है, इसका मूल्य इतना बड़ा है कि हर हालत में आप दुखी नहीं होते, आप सुखी रह सकते हैं। ऐसी कोई मास्टर की सुखी होने की जिनेंद्र देव ने अपनी दिव्य ध्वनि में रखी है, और वो भी सक्सेस हो करके, पढ़ करके नहीं बताया है, प्रैक्टिकली वो सुखी हो गए, अनंत सुख को प्राप्त किया, और उसका रास्ता भी बताया, उपाय भी बताया कि यही तरीका है सुखी होने का, और कोई तरीका नहीं है। अब सुख दो तरह का है, वो दुनिया में कौन बुद्धिमान लोग विचार करता है कि पीड़ा का भी है और टेंशन का भी है, दोनों का इलाज अलग अलग होता है। इस सुख दुख का विषय पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ध्यान नहीं जाता क्यों? प्रेजुडाइस वो है कि जितने भी संसार में सुख के साधन जाने माने गए हैं वो एक्सेप्ट कर लिया और इसके पीछे दौड़ लगाई। तो सुख दुख कैसे होता है उसका पता नहीं लगता है, वो प्रेजुडाइस में आ जाता है। और वही तो प्रश्न है इधर कि इंद्रिय सुख तो सुख रूप लगता है, आप कहते हैं कि दुख रूप लगता है, वो बात कैसे माने हम? हमको लगता ही नहीं। तो कहते हैं कि भ्रांति में है आप, पूर्वग्रह में है, प्रेजुडाइस में है, कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन उनका कान पकड़ाते हैं ज्ञानी, अगर तुमको सुख लगा तो वहां से वहीं रहो, सुख में ही रहो, सुख को छोड़ करके क्यों बाहर आते हो? तो वो बात तो उनको विचार में रख देता है। तो बात तो कुछ उसका अनुभव को पकड़ाया, क्या किया तो तुमको सुख लगाने, वो तुम्हारा अनुभव था ने, और सुख ले लो, और सुख ले लो, और सुख ले लो, नहीं मिला, दुख होने लगा, तो बात तो कुछ विचार करने लायक तो जरूर है, वरना तो विचार भी नहीं करता। अगर उतना अवकाश नहीं होता तो विचार भी नहीं करता कि हमको कोई विचार करना नहीं है, हमको हमारा सुख को भोगने दो। लेकिन जब सुख नहीं होता, सुख की जगह दुख आ जाता है और कहीं भी अनएक्सपेक्टेड दुख के प्रसंग आ जाते हैं, तब उनको लगता है कि ये विषय हमारा अनजाना है, इस विषय में जो जानकार लोग हैं उससे वो बात समझनी जरूरी होगी। तो कुछ एक लोग डाइवर्ट होते हैं, सब तो हो ही नहीं सकते, कुछ एक लोग होते हैं, उसमें भी बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, प्राय उसमें भी फेल होने वाले ज्यादा होते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकली पोजीशन रही है। ऐसा होने के बावजूद भी हमको हमारा नंबर सुखी होने में लगा देना चाहिए। भले कोई एक भी सुखी हो सकता है, क्योंकि यहां तो संसार में कोई एक भी सुखी नहीं हो सकता है। आप एक भी आदमी ले आइए कि जो संपूर्ण सुखी हो, कोई लॉर्ड किंग एम्परर कोई भी ले आओ, वो कहेगा कि हमको कई तरह तरह का टेंशन आता है, भोगे रोग भयम करके वो लिखा है ना भृतवर ने, रोग भी आ जाता है और मान में अपमान का भय है। सब जितनी भी सुख की चीज मानी गई है, प्रतिपक्ष में कोई ना कोई बात खड़ी है। वो भृतोरी ने अपने पद में लिखा है, इसलिए टेंशन तो आएगा आएगा और आएगा, और सबसे बड़ा भय, भय का दुख मृत्यु का होता है, क्योंकि पकड़ जिस चीजों पर है वो एक ही झटके में छोड़नी पड़ती है, तो बहुत बड़ा दुख होता है वहां। इसलिए मृत्यु का भय सभी को बहुत होता है, एक्सीडेंट का भय सभी को होता है, रोग का भय सभी को होता है। इस सभी प्रकार के भय के दुखों को छुड़ाने वाले भी कोई होते हैं, उन्होंने ये बात रखी है कि देखो जैसा हम कहें वैसा तुम प्रयोग करते जाओ, क्योंकि ये सुख दुख अनुभव का चीज है, तो तुमको अनुभव का प्रयोग देंगे हम, और उस प्रयोग की प्रैक्टिस करते ही तुमको मालूम पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वही सही है, वही यथार्थ है। इंद्रिय सुख आकुलता रूप है, वो कब दिखेगा कि उसका पूर्वग्रह से मुक्त होकर के अपने परिणामों को कोई अवलोकन करेगा तब मालूम पड़ेगा, न्यूट्रल होकर के अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि वास्तव में कहने वाला सही कहता है या गलत कहता है। हमको वो भी प्रेजुडिस नहीं रखना है कि वो सही कहता है, हम तो मध्यस्थ होकर के देखना है कि सही कहता है या गलत कहता है। और मध्यस्थ होकर के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कहने वाला सही कहता है, विश्वास आएगा। ज्ञानी पर विश्वास कब आता है, एक सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ले लें कि जब कोई भी जीव दुखी होता है और खास करके टेंशन से दुखी होता है, उनका समाधान उसको मिलता है उनकी समस्या का, तब उसको विश्वास आता है कि ये बात हमारे नॉलेज में नहीं थी और इस प्रकार का समाधान हम नहीं कर पाते थे, इसलिए दुखी थे। तो ये एक चमत्कारिक चीज दिखती है, क्योंकि संसार में इस प्रकार का इलाज कहीं भी नहीं है।
इसमें भी टेम्पोररी और एवरलास्टिंग दो तरह का सॉल्यूशन होता है।
हाँ, वो तो क्या है कि जो टेम्पररी दुख है उसका सॉल्यूशन भी टेम्पररी है, जो परमानेंट दुख है इसका सॉल्यूशन भी परमानेंट है।
इसलिए दुख का जो टेम्पररी सॉल्यूशन कर देता है वो सही नहीं
है। नहीं, यहाँ तो क्या होना चाहिए, अगर कोई बुद्धिमान है तो, अगर कोई उसको कहता है कि तुम्हारे सभी प्रकार के दुख का नाश हो जाए, दुख होवे ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होवे, और तुम हर हालत में सुख चैन में, सुख शांति में, आनंद में रहो, ऐसा कोई इलाज है, ऐसा कोई उपाय है, मार्ग है, तो उसकी दिलचस्पी लग जानी चाहिए, उसका अट्रैक्शन हो जाना चाहिए ना। और ऐसे सुख के लिए और ऐसा रिजल्ट के लिए, अगर कोई ऐसा रिजल्ट प्राप्त होता है तो इसके लिए कम से कम इसी के अनुपात में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। अरे ऐसी कोई चीज है तो मुझे ऐसा इसका रस है, ये मेरी समस्या है, अगर इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है तो मुझे बहुत रस है। आखिर में भी रस कहाँ आता है, सुख लेने में ही रस आता है, अट्रैक्शन कहाँ होता है, सुख लेने में।
टेम्पररी कोई सॉल्यूशन कर देता है उसके ऊपर आस्था आ जाता है, असली में सही व्यक्ति नहीं होने पर भी तो वो भूल हो जाता है,
नहीं वो तो क्या है कि पीछे तो वो गहराई में जाएगा। जब टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ तो व्यक्ति पूरी जानकार है या नहीं है, उसकी गहराई में जाएगा, आगे का सॉल्यूशन नहीं होगा तो पता चल जाएगा। थ्रू आउट सॉल्यूशन मिलेगा तब तो कोई आपत्ति नहीं है, जब नहीं मिलता है कुछ सॉल्यूशन तो उसको छोड़ देते हैं, विचार जो बुद्धिमान लोग हैं वो छोड़ देते हैं कि चलो भाई यहाँ से हमको बात पूरी पूरी नहीं मिलती है, क्यों कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ने का हमको कोई समाधान मिलता नहीं, कोई मार्ग मिलता नहीं। क्यों, ये तो एक प्रैक्टिकल साइड है कि कोई भी सूचना मिलती है, उपदेश मिलता है, डायरेक्टिव्स मिलती है, कुछ भी मिलता है, प्रयोग करें और प्रयोग से देख लें कि वो सही है या सही नहीं है, बस पता चल गया। तो ये समस्या भी है लोगों की कि भी कई लोग इस लाइन में बैठे हैं, उपदेश देने वाले की लाइन में भी बहुत लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति नहीं है, कौन सही है कौन सही नहीं है हम कैसे जाने, हमारा तो सब्जेक्ट नहीं है उसमें, हम कोई गलत व्यक्ति के में उसमें आ जाए, अंडर इम्प्रेशन में आ जाए तो क्या होगा, हमारा तो भला होगा ही नहीं, एक समस्या होती है। लेकिन इसका भी समाधान है कि जो भी कुछ कहते हैं वो मान लेने की बात नहीं है, प्रयोग सिद्ध करके मान लेने की बात है, बस पता चल जाएगा। और ऐसे कहीं जगह भटक भटक करके भी कोई ठिकाने आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम किसी को राइट पर्सन मिल जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है और ऐसे बन भी नहीं सकता। लेकिन इसलिए कोई भटकता है तो उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, गहराई में जाने का कोशिश करता है, पता चल जाता है कि यहाँ आगे रास्ता मिलता नहीं है, छोड़ देता है। हम नहीं जानते कि कौन से डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, और डिग्री तो सबके पास है, जैसे हार्ट डिजीज हुआ कार्डियोलॉजिस्ट बहुत हैं, दुनिया भर में कार्डियोलॉजिस्ट तो हजारों होंगे, अब कौन सबसे एक्सपर्ट है हम तो नहीं जानते, और हमारा इलाज हम सबसे एक्सपर्ट से कराना चाहते हैं, क्या करें। तो वहां तो इतनी सुविधा नहीं है कि हम एक से ऑपरेशन करा के फिर दूसरे से करा लें, लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता है, यहाँ तो ये सुविधा है कि आगे का रास्ता नहीं मिलता है, प्रैक्टिकली आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो डॉक्टर को बदल देना चाहिए, दवाई को बदल देना चाहिए। अगर हमको ठीक नहीं होता है तो खाने की दवाई में तो हम ऐसे ही करते हैं कि दवाई खा ली, ऑपरेशन में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन खाने की दवा में तो हो ही सकता है, क्योंकि 8-15 दिन दवाई खाई और हमको हमारा दर्द उतना ही उतना रहा तो हम दवाई बदलेंगे या डॉक्टर बदलेंगे, बस उसमें इसमें भी ऐसा ही है। इंद्रिय सुख वाले आकुलता में पड़े हैं, वो ज्ञानी कहते हैं, उन लोगों को आकुलता है, बहुत है, और आकुलता में पड़े हैं वो ज्ञानी जानते हैं, क्योंकि वो सुख शांति में है, इसलिए दूसरे के दुख को भी वो अच्छी तरह जानते हैं, उसमें आकुलता है वो भी दुख है, लेकिन बुद्धि का भ्रम है, इससे कल्पना से सब पदार्थ में सुख मान लिया है, बहुत से पदार्थ में सुख मान लिया है, भीतर में विचार करे तो वो दुख रूप आकुलता रूप है, भीतर में मैंने न्यूट्रल हो करके अवलोकन करे, ऑब्जर्वेशन करे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें आकुलता होती है, दुख होता है। आकुलता कैसे होती है, यानी आकुलता का जन्म कैसे होता है, के परिणाम बाह्य पदार्थ में जिस अनुपात में खिंचाव होकर के जाता है उतनी आकुलता है, मंद खिंचाव है तो मंद आकुलता है, तीव्र खिंचाव है तो तीव्र आकुलता है, वो तो सबके अनुभव की बात है, उसमें तो कोई सिखाने की जरूरत समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन है आकुलता। परिणाम जितने अंदर में समाते हैं उतना सुख लगता है। देखो निंद्रा में सुख क्यों लगता है, कि निंद्रा में विचार बंद हो जाते हैं, तो बाह्य पदार्थ के प्रति के जो खिंचाव वाले स्थूल परिणाम है वो बंद हो जाता है, तो सुख लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई नींद ले नहीं सकता, परमानेंट कोई नींद ले सकता है क्या, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा बात खत्म, फिर जगना पड़ेगा और ये विचार का चक्कर चालू हो जाएगा। ये डॉक्टर लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट क्या करते हैं मालूम है, मरीज को नींद में ले जाते हैं, क्या करते हैं, नींद में ले जाते हैं, वही प्रिंसिपल है इसका, कि जितना विचारों में खिंचाव है उतना दुख है, और पीड़ा है तो पीड़ा के प्रति खिंचाव है, और दूसरे तरह का रोग है तो दूसरे तरह का खिंचाव है, शरीर प्रति का खिंचाव है, रोग है वो रोग की जो रोग का दुख है वो तो शरीर प्रति का खिंचाव है, वो खिंचाव वो इंटेलिजेंटली बंद कर देते हैं, वास्तव में बंद नहीं होता है, परिणति चालू रहती है, लेकिन वो साइंस उन लोगों के पास नहीं है, तो जैसा वो बाहर आता है उसका चालू और जोर से चालू होता है, क्यों, कि उन्होंने आर्टिफिशियली बंद किया है, वो कोई नेचुरल वे नहीं है उसका, इसलिए नुकसान डबल होता है, एक तो खिंचाव बढ़ जाता है, दूसरा नींद की गोली से कुछ ज्ञान तंतु कुछ टिश्यूज हैं
वो खराब हो जाते हैं, नया रोग पैदा होने का एक कारण बन जाता है। तो जो कृत्रिम प्रयास है वो तो सही नहीं है, वो तो वो लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, लेकिन दूसरा कोई इलाज नहीं मिलता है तो फिर जाना पड़ता है वहां भी। यहाँ तो सही इलाज की बात है। भीतर में विचार करे तो वह दुख रूप आकुलता रूप है, स्वभाव से विपरीत सब विभाव दशा दुख रूप है। ये सिद्धांत हुआ कि आत्म स्वभाव सुख शांति और आनंद का है, इसके विपरीत जितना भी विभाव भाव है ये सभी दुख रूप है। सुगानी जी लिखते हैं कि उपयोग बाहर निकला जम का दूध समझो। क्या लिखा है? उपयोग बाहर निकला, परिणाम बाहर गया, ये भाव मरण हो गया, ये व्याकुलता को पैदा करने वाला है। इसलिए हमारे जिनेंद्र परमात्मा ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान है, उसके सब परिणाम भीतर में जो अनंत शांति का पिंड है आत्मा, उसमें लगे रहते हैं और अनंत शांति को भोगते हैं। उनके परिणाम इधर उधर नहीं जाते, वरना इसके ज्ञान में तो लोकालोक झलकते हैं। तीन काल तीन लोक का उसको ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान उपयोग बार नहीं जाता। तीन काल तीन लोक का ज्ञान निरवशेष अंतर्मुख दशा में है। निरवशेष मैंने परिपूर्ण अंतर्मुख जो दशा है उसमें वो झलकते हैं, इसलिए उनका उपयोग बाहर नहीं जाता तो दुख नहीं है। उपयोग बाहर गया कि दुख आकुलता को पैदा करेगा, करेगा और करेगा ही। स्वभाव से विपरीत सब विभाव दशा दुख रूप है, उसमें आकुलता का वेदन है। कल्पना से उसमें सुख है ऐसा लगता है, सुख की कल्पना बना ली है, लेकिन विचार करे तो दुखी है। एक 4 साल का छोटा सा बच्चा होता है, अपने पिताजी के साथ वो भी बाजार में उंगली पकड़ करके चलता है। उसने कोई 1-2 किलो 2 किलो 1.5-2 किलो छोटे से कोई चीज खरीदी, थैली में वजन था। लड़का ने बोला कि पापा हमको पकड़ने दो, हम उठाएंगे। बोले बेटा ये वजन है, तुम छोटे हो नहीं उठा सकोगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उठाऊंगा, मेरे को उठाने का शौक है, मेरे को उठाने का हौस है, उत्साह दिखाता है, उमंग दिखाता है, हमको दो हम तो उठाएंगे। वो ले लेता है, 5-10 मिनट चलता है, उसको पता चल जाता है कि जो पापा कहते थे वो ठीक है, वो वजन ज्यादा लगता है और मेरा बूता नहीं है उठाने का। तो बोलता है कि पापा आप ले लो। लेकिन क्यों भाई? क्योंकि बहुत ज्यादा वजन लगता है हमको, हम तो बताते थे। लेकिन उनकी कल्पना में वो बात थी कि नहीं हम उठा सकेंगे और उठाने में हमको आनंद है। क्या ये बोझा उठाने में हमको आनंद है, उसका उमंग में उसको दुख नहीं दिखाई दिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो बात थी नहीं, तो परिस्थिति आकर के रह गई। बस यही हम लोगों की हालत है कि उमंग से उत्साह से बाह्य पदार्थ के प्रति दौड़ लगाते हैं, पता चल जाता है कि इसमें तो सुख नहीं है दुख है, तो हमको वो बोझा को हटा देना पड़ता है। चाहे खाने की अच्छी से अच्छी चीज हो, नहीं खा सकते। इसलिए कल्पना से उसमें सुख है ऐसा लगता है, लेकिन विचार करे अनुभव करे अनुभव को देखें तो दुख है ऐसा अवश्य अवश्य मालूम पड़ेगा। इस तरह से सुख दुख के विषय में और भी चर्चा की है एक पैराग्राफ में, आगे लेंगे, यहाँ तक रखें।